खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का तर्स, उसका रहम, उसका फजल आप सब पर होता रहे। इससे पहले कि हम खुदा का कलाम सीखना शुरू करें, आए हम सब खुदा के हजूर झुकें और दुआ करेंगे कि खुदा पाक रू, जैसा हमने गाया कि हमारी जाहरी सूरत बदले, हमारा चार चलन बदले, हमारा बैठना उठना बदले, ताकि हम इस दुनिया में अपनी जिंदगी से यीशु मसीह को जाहिर करने वाले बने। तो हम सब दुआ करेंगे। खुदा बाप, आज के कलाम के लिए, आज के दिन के लिए तेरा शुक्र हो। आज हम सब आए हुओं को बड़ी बरकत दे, जो कुछ भी सीखें हम सब के लिए नसीहत, तरबियत, तरक्की और तेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत रिश्ता बनाने का बायस ठहरे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से इफिसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पहला बाब, उसकी 14वीं आयत पर गौर करेंगे। और जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं, मैंने आपको सिखाया रूहुल कुद्दस के वो पांच काम जो ईमानदारों की जिंदगी में पोशीदा तौर पर रूहुल कुद्दस करता है। और ये काम कब होते हैं? जब कोई कलामे हक को, जब कोई खुदा की खुशखबरी को, यानी खा कोई गुलाम है, खा कोई आजाद है, खा वो यहूदी है, खा वो गुलाम यूनानी है, किसी भी कबीले, किसी भी नस्ल, किसी भी जुबान से उस आदमी का, औरत का तल्लक हो, जब वो कलामे हक को, खुशखबरी के पैगाम को, अंजील को, अंजील क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह दफनाया गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और आसमान पर दाहिनी तरफ जा बैठा, जो कोई उस पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा। उस वक्त खुदा का पाकरू पांच काम ईमानदारों की जिंदगी में करता है जो हम सीख चुके हैं। और मुझे उम्मीद है, मेरी दुआ है कि आप इसे, इन कामों को याद रखने की कोशिश करें, कि आप रूहुल कुद्दस रखते हैं, आप नई मखलूक हैं, आप खुदा के रहने की जगह, उसका पाक मकदस हैं, और फिर आप पर रूहुल कुद्दस की मोहर हुई। सो मेरे साथ निकालें इफिसियों पहला बाप, उसकी 13वीं और 14वीं आयत में से आज हम 14वीं आयत पर गौर करेंगे। 13वीं आयत में पालूस कहता है, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक महुदा रूह की मोहर लगी। सादा से अल्फाजों में पालूस कहता है, जब तुमने कलामे खुदा में से अंजील की बशारत को सुना किसी के वसीला से, तो तुम्हें रूहुल कुद्दस की मोहर हासिल हुई। मोहर किस बात की अलामत थी? जो आज भी और गुजरे दौर में भी इस बात की जाहरी अलामत थी। जैसे मिसाल के तौर पर, जब कोई दुकान शहर में हुकूमत को पैसे अदा नहीं करती, तो हुकूमत के लोग आके उस दुकान को ताला लगा देते हैं और उस पर मोहर करके लाल रंग की गूंद लगा देते हैं। आप सब इससे वाकिफ हैं। भाई आसफ से पूछ सकते हैं, बहुत दफा जब वो अपने अफसरों के साथ जाते हैं, तो हो सकता है उन्होंने ये काम किया हो कि दुकान के ताला लगाया हो, और वो दुकान किसके मुतहद हो गई? बल्दिया के या गवर्नमेंट के? गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर कोई उस ताले को नहीं खोल सकता। इसी तरह हम पर रूहुल कुद्दस की मोहर लगी और इस मोहर को कोई तोड़ नहीं सकता, यानी कि हम खुदा की हफाजत में हैं, हम खुदा के कुदरत और जोर में महफूज किए गए हैं। इसे ऐसे देख सकते हैं जैसे अय्यूब नबी की जिंदगी में, जब अबलीस ने कहा कि मुझे अपना बंदा अय्यूब दे दे ताकि मैं उसे दुख पहुंचाऊं, तो खुदा ने कहा कि जा उसे ना मारना, मैंने तुझे दिया। लेकिन अबलीस ने कहा क्या खुदा से, पहले अपनी बाड़, पहले अपनी हफाजत, पहले अपनी कुदरत उसके गिर्द से हटा ताकि मुझे मौका मिले ताकि मैं उसे दुख पहुंचाऊं। ऐसी ही कुदरत, ऐसी ही ताकत खुदा की हमारे इर्द लगी हुई है। कोई भी चीज खुदा की मर्जी के बगैर, खा अबलीस है, रियासतें हैं, ताकतें हैं, जितनी भी कोई ताकत है, आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक आपका बाप आसमानी उस ताकत को नामुमकिन होने दे, उस बीमारी को आप पर आने ना दे, उस दुख को आप पर आने ना दे। खुदा की मर्जी के बगैर आपको कीड़ी, जो कक्की कीड़ी कहा जाता है, वो भी नहीं काट सकती। यहाँ पर पालूस कहता है पाक रूह की मोहर लगी है, यानी कि तुम खुदा में महफूज हो। और 14वीं आयत पालूस कहता है वो ही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मेरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सताइश हो। आज हम 14वीं आयत पर गौर करेंगे। आप सोचते होंगे कि यहाँ पर पालूस क्या कह रहा है, वही, ये लफ्ज वही का किसके लिए इस्तेमाल किया है। वही का मतलब यानी कि रूहुल कुद्दस, जिसके बारे में वो बात कर रहा है। कहता है कि रूहुल कुद्दस कौन है? हमारा मददगार। रूहुल कुद्दस कौन है जो हमें इत्मीनान देता है? रूहुल कुद्दस कौन है जो हमें समझ देता है? रूहुल कुद्दस कौन है जो हमें बोलने की ताकत देता है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मेरा रूह, पाक रूह आएगा, तुम्हें सिखाएगा। मेरे साथ एक हवाला निकालें, यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब, उसकी हम जब देखते हैं 26वीं आयत को, तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर ही है और यीशु मसीह अपने शिगिर्दों से बात करते हुए कहता है कि क्या होने वाला है जब मैं तुमसे जुदा होऊंगा, जब मैं आसमान पर चला जाऊंगा तो जमीन पर मेरा रूह आएगा और वो तुमको सिखाएगा। यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी 26वीं आयत को गौर से सुने। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। सो खुदा का पाक रूह जो आपके अंदर है, जब आप हो सकता है ना उम्मीद होते हैं, तो खुदा का पाक रूह आपको खुदा का वादा याद दिलाता है। जब आप बीमारी में या मुश्किल हालात में होते हैं, या ऐसी परेशानी में या बदनी या रूहानी तकलीफ में होते हैं, तो आप उसे पुकारते हैं तो पाक रूह आपकी मदद करता है। मदद का मतलब यानी कि मदद करने वाला, हमारी रहनुमाई करने वाला। तो रूहुल कुद्दस क्या है? आपके अंदर है और वो जमीन पर आया आपकी मदद करने के लिए। और यीशु मसीह ने क्या कहा था अपने शिगिर्दों से कि यरूशलम में ठहरे रहना, तुम पर रूहुल कुद्दस नाजल होगा। ये वो ही रूह है जिसके बारे में पालूस कहता है, वो ही खुदा की मलकियत। तो लफ्ज वही का आपको समझ आ गई होगी ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, रूहुल कुद्दस के लिए। तो दूसरा लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है, खुदा की मलकियत। आप सोचते होंगे पालूस का क्या कहने का मतलब है, क्या पालूस जमीन का, जमीन बेचने का काम कर रहा है, ये मलकियत का मतलब क्या है और खुदा की मलकियत क्या है। आज हम सीखेंगे कि खुदा की मलकियत कौन है। सवाल ये है, मलकियत का मतलब मेरास, विरासत, जायदाद या जागीर, और वो कौन है। खुदा का कलाम कहता है कि खुदा की मलकियत उसके लोग हैं जिन्हें उसने अपने बेटे के वसीला से खरीदा है। खुदा के लोग कौन हैं? आप। इसलिए मेरे साथ एक हवाला निकालें, पहला पत्रस 2 बाप उसकी 9 आयत। पहला पत्रस 2 बाप उसकी 9 आयत में खुदा का बंदा पत्रस कहता है कि खुदा की मलकियत कौन है और क्यों उसने हमें अपनी मलकियत ठहराया। पहला पत्रस 2 बाप उसकी 9 आयत में कहता है, लेकिन तुम, यानी के उस वक्त के लोग और आज जो मैं और आप सुन रहे हैं, कहता है लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल। बरगजीजा से मुराद यानी के बुजुर्ग, यानी के रास्तबाज, यानी के उम्दा लोग, शाही काहिनों का फिरका। शाही काहिनों से मुराद यानी के जैसे बादशाह के घर में शहजादा होता है वैसे ही पतरस कहता है। पतरस कहता है, खुदावंत का बंदा पतरस रसूल कहता है, तुम खुदा जो बादशाहों का बादशाह है उसके खानदान के लोग हो। मुकद्दस कौम यानी के पाक किए हुए लोग, ऐसी उम्मत यानी के ऐसा फिरका, यानी के ऐसी जमात, यानी के ऐसा ग्रुप, यानी के ऐसे लोगों का इकट्ठा, ऐसी उम्मत, ऐसे लोग जो खुदा की खास मलकियत हैं। तो कौन है खुदा की मलकियत? आप। हर वो बेटी, हर वो बेटा, हर वो बुजुर्ग, हर एक वो मसीही जिसने यीशु मसीह को कबूल किया है, खुदा की मलकियत है। किस लिए? ताके उसकी खूबियां जाहिर करो, उसकी खूबियां जाहिर करो। किसकी खूबियां? खुदा बाप की। खुदा की खूबियां क्या है? मोहब्बत। खुदा की खूबी क्या है? माफ करना। खुदा की खूबी क्या है? एक दूसरे की मदद करना। खुदा की खूबी क्या है? अपने आप को खासकार खाकसार करना। खुदा की खूबी क्या है? अपने खुदा क्या चाहता है हमारी जिंदगी से जाहिर हो, उसकी खूबी। तो हम खुदा की मलकियत हैं, उसकी खूबियां जाहिर करें जिसने तारीकी से हमें, तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। एक वक्त था जब हम गुनाह में थे, एक वक्त था जब हम मुर्दा थे रूहानी तौर पर, लेकिन अब तुम मसीह में जिंदा हो। सवाल ये है कि क्या हम इस बात पर यकीन करते हैं? क्या हम इस बात का यकीन करते हैं कि खुदा ने हमें उम्दा लोग कहा है? क्या हम इस बात का यकीन करते हैं कि हम उस बादशाहों के बादशाह के बेटे और बेटियां हैं जिसके बारे में हम गाते हैं, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। बात है यकीन करने की। इसलिए मेरे साथ एक और हवाला निकालें और आदि आयत को हम आने वाले वक्त में सीखेंगे। तो आज हमने सीखा वही यानी कि रूहुल कुद्दस, खुदा की मलकियत यानी कि खुदा के लोग किस लिए बुलाए गए, उसकी रोशनी को जाहिर करें। मत्ती की इंजील 5 बाब मेरे साथ निकालें, इस हवाला को पढ़ेंगे और फिर आने वाले दिनों में हम सीखेंगे कि खुदा की खूबियां हम किस तरह जाहिर कर सकते हैं इस तारीकी की दुनिया में, इस मुर्दा दुनिया में, खुदा से अलहदा दुनिया में, इस बेदीन दुनिया में किस तरह हम खुदा की खूबियां जाहिर कर सकते हैं अपनी जिंदगी से। मत्ती की इंजील 5 बाब उसकी 14 आयत, यीशु मसीह ने कहा अपने शिगिर्दों से, तुम दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया का और जो शहर पहाड़ पर बसा हुआ है छुप नहीं सकता। इस बात पर हमें यकीन करने की जरूरत है, तुम दुनिया का नूर हो। और 16वीं आयत को देखे, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है ताजीम करें। तुम दुनिया का नूर हो। हमें इस बात पर यकीन करने की जरूरत है, आए हम खुदा के हुजूर झुकें और अपने काम से, अपने बोलने से, अपने उठने बैठने से, अपने चाल चलन से, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करने से जाहिर करें ताकि लोग देख के, अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपनी जिंदगी से जाहिर करें ताकि वो हमारे आसमानी बाप की तआज़ीम करें। आए हम खुदा के हुज़ूर झुकें। खुदा बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरी मलकियत हैं, हम तेरी जायदाद हैं, हम तेरी मेरास हैं, क्योंकि तूने अपने बेटे के वसीला से, उसके खास खून के वसीला से हमें खरीदा है। खुदा, दुआ ये है कि हमको अपनी ज़िंदगी से तेरी खूबियाँ जाहिर करने की कुव्वत और ताकत दे। हमारी दुआ ये है कि हमारे बोलने, उठने, बैठने, चलने से हमारे इर्द गिर्द के लोगों को खुदा खुदा तेरी तज़ीम करने का मौका मिले, तेरी इज्जत, तेरी हम्द, तेरी सताइश, तेरी वडियाई करने का मौका मिले हमारे बोलने चालने से। हम सबको मोहब्बत करना सिखा, हम सबको एक दूसरे की ज़रूरियात में मदद करना सिखा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।